ओम शांति। सभी कहेंगे एक साथ ओम शांति। ओम शांति। कल प्रातःकाल आप सबसे मुलाकात हुई थी और आज इस समय आपसे फिर से मिल रहे हैं, लेकिन इस समय का ये विशेष सत्र है अनुभव का, तो मेरा यह बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि पिता श्री ब्रह्मा बाबा के मैं बहुत निकट आई थी, क्योंकि मैं इस संस्था से 1958 अगर कहें तो गलत नहीं होगा, पर 60 से ऑफिशियली जरूर थे, तो 1958 में जब हम केवल 10 साल के थे, 48 का जन्म है, तो 58 में हम अपनी मदर के साथ मुंबई के एक गीता पाठशाला में गए, जहाँ शिव परमात्मा की वाणी जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा उच्चारी जाती है वो हमने सुनी, और सुनते ही अनुभव हुआ कि मैं कुछ सब कुछ समझ रही हूँ, मेरे लिए ये नई बात नहीं, जबकि मैं केवल 10 साल की थी। और फिर 1960 में 59 दिसंबर या 60 जनवरी याद नहीं, लेकिन 59-60 में मैं जब 11-12 साल की थी तब ब्रह्मा बाबा मुंबई में आए थे। बाबा माउंट आबू में रहते थे लेकिन हर साल मुंबई जरूर आते थे, क्योंकि मैं मुंबई की हूँ तो हर साल मैं बाबा को देखती थी, मिलती थी। उस समय स्कूल पढ़ती थी और पहले सेवा केंद्र पर जाती थी, बाबा से वाणी सुनती थी और फिर स्कूल जाती थी, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाती थी। तो बचपन से ही जैसे आपने सुना आध्यात्मिकता में मेरी बहुत रुचि थी, मेरी माँ भी आध्यात्मिक व्यक्ति थी, बहुत भक्ति करना, पूजा पाठ करना, सत्संगों में ले जाना, संतों के कार्यक्रमों में जाना, सत्संग सुनना, ये भी बचपन से ही हम करते रहे, तो आध्यात्मिक संस्कार तो थे ही। तो जब मैं पहली बार ब्रह्मा बाबा से मिली, मैं 12 साल की थी, 11-12 साल की, तो बाबा ने मुझे जो फर्स्ट इम्प्रेशन था, बाबा ने मुझे कहा आओ बच्ची, क्योंकि बाबा सबको बच्चे बच्चे बुलाते थे, बच्चे प्रजा पिता ब्रह्मा, तो सारी प्रजा का पिता जिनको शिव परमात्मा ने अपना माध्यम बनाया नई सृष्टि की रचना करने लिए, तो बाबा ने कहा आओ बच्ची। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पिता बुला रहे हैं, जबकि मैं बाबा को इतना जानती नहीं थी, ये जानती थी कि संस्था के आप प्रमुख हैं, फाउंडर हैं, आती थी बीच बीच में, छोटी थी, लेकिन बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो मुझे लगा मेरे फादर, मेरे पिता ने मुझे बुलाया, क्योंकि बचपन से ही मैंने अपने पिता को खोया, मैं केवल 3 दिन की थी तो फादर एक्सपायर हुए एक रोड एक्सीडेंट में, बहुत यंग एज थी, मदर तो केवल 18 साल की थी, और हमारी फैमिली पाकिस्तान से आई थी, 47 में पार्टीशन हुआ और 48 में मेरा जन्म हुआ, तो पाकिस्तान से ही आए थे और मेरे पिताजी नई बिजनेस शुरू कर रहे थे और रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई, केवल 3 दिन की थी। तो अवश्य मुझे इसका दुख था कि मैंने अपने पिता को नहीं देखा, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा और बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो मुझे लगा मेरे पिता मुझे बुला रहे हैं, और मैं इतनी जैसे एक मैग्नेटिक पुल बाबा की अनुभव हुई और मैं दौड़कर बाबा से ऐसे गले लगी जैसे मुझे सच्चा पिता मिल गया। और उसी समय ब्रह्मा बाबा से मुझे वरदान मिला कि बच्ची अपने पिता के पास पहुंच गई। तो मेरा सच्चा पिता मिला, वरदान मिला उनसे, और मुझे लगा कि अब मैं सही रास्ते पर, सही ठिकाने पर आई हूँ। तो बाबा के सामने मैं भाषण करती थी, कविताएं सुनाती थी, बहुत कुछ करती थी बचपन से ही। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के कारण, मुंबई में हम पढ़े कॉन्वेंट स्कूल में, तो इंग्लिश में भी प्रवचन करती थी बाबा के सामने। तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उस समय बहुत कम ऐसे बहनें थी जो इंग्लिश में प्रवचन कर सकती थी। तो जब बाबा के आगे इंग्लिश में प्रवचन किया तो बाबा ने एक सुंदर वरदान दिया कि बच्ची आप इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा आपको विदेश भेजेगा। जबकि मुझे विदेश का क्या रूप है ये पता भी नहीं था, लेकिन उस समय जैसे भगवान का वरदान मिल गया, पिता मिल गए और ये वरदान मिला कि विदेश जाना है, विदेश में आप सेवा करोगे। तो ये शुरुआत थी और फिर पढ़ती रही क्योंकि बाबा ने ये भी कहा कि लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई करनी है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसे तो नहीं बचपन में हम समर्पित होते हैं, 18 साल के तो कम से कम होने चाहिए, तब बालिक कहलाएंगे और समर्पित हो सकते हैं। तो जब मैं कॉलेज में थी तो उस समय घर से बहुत आग्रह था कि मैं मेडिकल लाइन लूँ, डॉक्टर बनूँ। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, क्योंकि उस समय हम बाबा को पत्र लिखते थे और बाबा का जवाब आता था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको बाबा पत्र जरूर जवाब में लिखते थे। तो बाबा ने मुझे जवाब दिया, मैंने बाबा को लिखा कि बाबा ऐसे घर में कहते हैं आप डॉक्टर बनो, तो उसके लिए MBBS करना पड़ेगा इंटर साइंस के बाद। तो बाबा ने मुझे पत्र में जवाब दिया कि बाबा की आप में बहुत आश है और बाबा चाहेंगे कि आप रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। रूहानी डॉक्टर अर्थात आत्माओं का डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। तो मैंने यही संकल्प किया कि मैं रूहानी डॉक्टर बनूंगी, वो MBBS नहीं करना है। फिर तो ग्रेजुएशन भी हुआ 69 में, और 69 में मैं फाइनल ईयर में थी, BSc कर रही थी कि समाचार मिला कि ब्रह्मा बाबा ने देह त्याग किया है। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने देह त्याग किया। तो जैसे मुझे पता चला, मैं तो बॉम्बे में थी, कॉलेज पढ़ रही थी, मेरे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होने थे, जनवरी का महीना था, लेकिन जैसे मुझे पता चला तो मुझे लगा कि बस अब ये संसार खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे अंदर ये था कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं और एक नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं। अब ब्रह्मा बाबा ही चले गए तो संसार खत्म, ये विनाश होगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी तो विनाश का साक्षात्कार हुए, बाबा को सत्युगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो मुझे ऐसे ही महसूस हुआ, लेकिन उसी समय मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुआ, एक साक्षात्कार के रूप में अनुभव हुआ। ब्रह्मा बाबा एक उनका आकारी रूप, बिल्कुल फरिश्ता रूप, लाइट के बॉडी में वो जैसे मेरे सामने आ गए और मुझे कहा, क्योंकि मैंने बाबा को कहा बाबा आप चले गए और मैंने आपको, आपका जो आपकी मेरे में आश थी वो मैंने पूरी नहीं की, अभी तो रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो पढ़ी रही हूँ। तो बाबा ने उसी समय जैसे मुझे बहुत सुंदर वरदान दिया, सूक्ष्म में मैं एक अनुभव कर रही हूँ, एक साक्षात्कार जैसे हुआ मुझे। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बाबा ने कहा तुम बाबा की आश पूरी करोगी। और मैं गया नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ और अंत में सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा, साथ में जाएंगे। तो आपको बाबा की आश पूरी करनी है और बच्चों के साथ हूँ मैं, ये तीन शब्द अनुभव हुए, तीन वाक्य। बस उसके बाद थोड़ी मुझे आहत मिली और मैंने पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन हो गया। और फिर तब माउंट आबू में यहाँ कुमारियों की ट्रेनिंग हो रही थी, कॉलेज की कुमारियाँ। तो कई हम बहनें हैं जो उस समय कॉलेज में पढ़ती थी और पढ़ाई पूरी करके माउंट आबू आई ट्रेनिंग लेने के लिए। तो उस ट्रेनिंग में हम भी आए और उसके बाद हम सब सेवा केंद्रों पर गए, अलग अलग सेवा केंद्रों पर गए। तो तब से हमारा जीवन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बीता। तो कई स्थानों पर गए और ये मेरा सौभाग्य है कि जहाँ जहाँ मैं जाती थी, करीब एक साल रहती थी तो वहाँ की भाषा सीख लेती थी। मैं बेंगलोर में, मुझे भेजा दादी प्रकाशमणि थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, तो उन्होंने मुझे बेंगलोर में भेजा। क्योंकि मैंने कहा दादी जी को, दादी जी मुझे वहाँ भेजो जहाँ इंग्लिश में सेवा हो। तो बेंगलोर, तो क्योंकि साउथ इंडिया में इंग्लिश चलती है, तो वहाँ दादी जी ने वहाँ भेजा। पर इंग्लिश की सेवा तो कम हुई, मैंने कन्नड़ा सीख ली, वहाँ की भाषा कन्नड़ा समाजा, जो बेंगलोर की भाषा है कर्नाटक की, वो सीख ली, एक साल रही। फिर दादी जी ने मुझे नेपाल भेजा, वहाँ बहुत फॉरेनर्स आ रहे थे, एग्जीबिशन रखी थी, तो हमने एक साल वहाँ रह के नेपाली भाषा सीख ली। फिर एक साल के बाद दादी जी ने मुझे हैदराबाद भेजा, साउथ इंडिया। तो हैदराबाद में जैसे गई तो वहाँ एक साल रही तो तेलुगु भाषा सीख ली। मानो इस प्रकार से ये साउथ इंडियन भाषाएं भी सीखी। फिर दादी जी ने मुझे श्रीलंका भेजा, क्योंकि श्रीलंका में नया सेवा केंद्र खुल रहा था। तो फिर मैंने तमिल भाषा भी थोड़ी सीख ली, तो मैंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, ये भाषाएं भी सहज सीख ली हमने। मानो कि ये भी परमात्मा का वरदान था मुझे उस समय। और फिर 74 में कैसे बाबा ने मुझे विदेश सेवा में भेजा, अफ्रीका में। तो अफ्रीका का निमंत्रण मिला और 74 से लेके आज 2024 है, पूरे 50 साल हो गए। तो अफ्रीका में सेवा खुले 50 साल हुए और फिर मॉरिशियस में भी सेवा केंद्र खुला। तो आज क्योंकि 50 साल हुए तो वहाँ गोल्डन जुबली मना रहे हैं सेवाओं की। तो वहाँ जून महीने में मेरा जाना होगा, तो वहाँ बहुत सेवाएं हैं पूरे अफ्रीका में। 54-56 कंट्रीज है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सभी कंट्रीज में बाबा के केंद्र हैं, सब कंट्रीज में। और वहाँ के अफ्रीकन्स सेवा केंद्र चलाते हैं, आप सोचो। तो 140 कंट्रीज में हमारी ब्रांचेस हैं, लेकिन अफ्रीका में तो सभी कंट्रीज में है हमारी सेवाएं, और मॉरिशियस में भी है। तो इस साल हम जाएंगे। लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का मुझे सानिध्य मिला, बाबा के वरदान जो मुझे प्राप्त हुए उन अनुभवों से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मेरा ये भी सौभाग्य है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारी एक बहुत अच्छी सीनियर दादी थी, दादी माना बड़ी बहन, जिनको हम मनोहर दादी कहते हैं, वो यहाँ ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर भी थे। तो वो ब्रह्मा बाबा की पूरी हिस्ट्री सुनाती थी, शुरू से लेके अंत तक, 1936 में कैसे इसकी शुरुआत हुई और ब्रह्मा बाबा को कैसे दिव्य साक्षात्कार हुए। तो मैं उनसे बहुत सीखी और जैसे मैंने उनसे इनहेरिट कर लिया। और मैं भी जब शिविर कराती हूँ तो ये हिस्ट्री ज़रूर ब्रह्मा बाबा की सुनाती हूँ, जो मेरा निजी अनुभव भी है। क्योंकि हम तो 1958 में आए, जबकि ये संस्था 1956 36 में शुरू हुई, हैदराबाद सिंध में, फिर कराची में थी। और मेरे लौकिक पेरेंट्स कराची के ही थे। मेरी ग्रैंड मदर ने भी कराची में ब्रह्मा बाबा को देखा था, लेकिन मेरी मदर तो उस समय बहुत छोटी थी, परंतु मेरी मदर भी को मेरी मदर जो छोटी थी उस समय मेरी नानी जी उनको ले गई थी संस्था में। लेकिन ब्रह्मा बाबा से मानो हमारा ऐसा रिश्ता था जैसे कि हम कहेंगे जन्म जन्म का रिश्ता। बहुत प्यार करते थे कन्याओं को विशेष, क्योंकि बाबा यही कहते थे कि तुम कन्याएं सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाओगे, सारे विश्व का कल्याण करोगे, आप सृष्टि पर स्वर्ग लाओगे। तो आप देखेंगे कैसे शिव परमात्मा ने ब्रह्मा पिता के द्वारा माताओं और बहनों को आगे किया। इसलिए जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने यहाँ कहा कि ये बहनों द्वारा संचालित संस्था है, इसीलिए इतना दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि शिव परमात्मा ब्रह्मा पिता के द्वारा यही सबको लक्ष्य दिया। यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का पूजन है, नारी का सम्मान है, वहाँ देवताओं का वास है। तो देवताएं ही का संसार रचने के लिए नारी शक्ति को आगे किया। तो ब्रह्मा बाबा मानो वो पायनियर थे, वो बीज थे जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पण किया, और समर्पण बहनों के आगे किया, उनके आगे विल कर दी अपनी प्रॉपर्टी। वैसे तो आप बहुत बड़े जौहरी थे, जवाहरातों का व्यापार करते थे, कोलकाता में इनका बहुत बड़ा शोरूम था, और उनके जो ग्राहक थे वो राजा महाराजा लोग थे। तो 1869 में आपका जन्म हुआ, और 1936 में जब आपकी उम्र केवल 60 वर्ष की थी, तब आपको कई दिव्य साक्षात्कार हुए, और उन दिव्य साक्षात्कारों में आपने विनाश का साक्षात्कार किया, कैसे तीन रूप से दुनिया का विनाश हो रहा है, और फिर इस विनाश के बाद एक नई दुनिया आती है जिसको सतयुग कहते हैं। तो सतयुग की स्थापना का साक्षात्कार हुआ, और एक आकाशवाणी उनको हुई कि आपको ऐसी श्रेष्ठ दुनिया बनानी है, ऐसी सतयुगी दुनिया बनानी है। तो ब्रह्मा बाबा को ये बहुत बड़ा कार्य शिव परमात्मा ने दिया, और उसके लिए माताओं बहनों को आगे करना है। उन्हें अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी माताओं के आगे विल कर दी, और ये कार्य हैदराबाद सिंध में शुरू हुआ 36-37 में। और ये संस्था बढ़ती गई, भाई बहने आते गए, समर्पित होते गए, उनको साक्षात्कार हुआ। तो तीन प्रकार की क्रांतियां उस समय हुए 1936-37 में, जब इसला रेवोल्यूशन ये हुआ, धूम मच गई। ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण जैसे खड़े हैं, और जो भी बाबा के पास आते थे वो ओम की ध्वनि करते थे और ध्यान में चले जाते थे, स्वर्ग की दुनिया देखते थे, सतयुग देखते थे, और वो थे कि कैसे हम देवता बन रहे हैं। तो साक्षात्कारों की धूम, ये बिगिनिंग में ये कार्य शुरू हुआ इस संस्था में। तो ये एक ऐसी लहर फैल गई, एक वर्ल्ड न्यूज बन गई, इंटरनेशनल न्यूज बन गई 1936-37 में, कि भारत, उस समय तो एक ही भारत था, अविभाजित भारत था, कि भारत में एक दादा लेखराज है जिनके पास एक चमत्कारिक शक्ति है, जो इनके पास जाता है उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और उसी आकर्षण से बहुत भाई बहने आ गए, तो ये एक न्यूज चारों ओर फैल गई। तो आप देखेंगे हमारी जो भी सीनियर्स हैं, उन सब वो सीनियर्स कैसे आ गई, हमारी दादियां जिनको हम कहते हैं बड़ी बहने हमारी, उन सबको बाबा से साक्षात्कार हुए, सतयुग के साक्षात्कार हुए, स्वर्ग के साक्षात्कार हुए। उसमें हमारी मम्मा थी, जगदम्बा सरस्वती, वो तो केवल 17 साल की थी जब आई अपनी माँ के साथ, तो इनकी माँ को बाबा से साक्षात्कार हुआ। दादी प्रकाशमणि ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी, उनको भी बाबा से साक्षात्कार हुआ और एक अनुभव हुआ कि कैसे मैं सतयुगी दुनिया में एक महारानी के रूप में हूँ। मानो वो साक्षात्कारों की धूम थी, तो एक क्रांति हो गई और उसके आधार से आते गए भाई बहने। और दूसरी क्रांति ये हुई कि महिलाएं ज्यादा आई, लेडीज ज्यादा आई, कन्याएं माताएं वो ज्यादा आई, उनको ज्यादा साक्षात्कार हुए, पुरुषों को कम, परंतु बहनों को ज्यादा हुआ और वो समर्पित होती गई होती गई। तो कैसे 1937 से लेकर 1950 तक ये संस्था कराची में रहे, और 1937 टू 50 मानो लगभग 14 साल ये संस्था कराची में रहकर तपस्या की, बहुत तपस्या की इन्होंने, दुनिया की निगाहों से दूर थे, और 14 साल तपस्या जो इन्होंने कराची में की, उस समय दुनिया का नक्शा बदल गया। सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 टू 1945, 6 साल तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कम्युनिज्म आ गया यूरोप में, मानो यूरोप का ही नक्शा जैसे बदल गया, यूएसएसआर बना, ये सब जो कुछ भी हुआ ये उसी समय हुआ, और लाखों लोग मारे गए, हिटलर ने जो तबाही मचाई, लाखों लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे, और वो समाप्त तब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया। तो ये ब्रह्मा बाबा को 1936 में ही साक्षात्कार हुआ था। 3 रूप से विनाश इस कलयुगी दुनिया का होगा। पहला रूप बाबा ने देखा एटॉमिक वॉर, कैसे हवाई जहाज से कुछ मिसाइल गिरा और जहां गिरा वहां आग ही आग लगी, जल गए सब खत्म एटॉमिक वॉर में। और फिर दूसरा साक्षात्कार किया जिसमें सिविल वॉर देखा, तो वो एक एटॉमिक वॉर का एक नमूना था 45 में जब हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिरा। फिर बाबा ने दूसरा साक्षात्कार किया सिविल वॉर का, खून की नदियां बह रही है और लोग कैसे मर रहे हैं, और उसका रिहर्सल 47 में हुआ जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, कैसे उस बंटवारे में जो हिंदू थे पाकिस्तान में, हिंदू थे, सिख थे या जो अन्य थे मुस्लिम के अलावा, उन सबको कहा आप लोग हिंदुस्तान जाओ, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री बनना है, आप हिंदुस्तान जाओ, या तो मुसलमान बन जाओ या तो सिर कटवाओ, ये 3 ऑप्शंस के अलावा चौथा कोई ऑप्शन नहीं। तो सब भागे, हाथ खाली, जेब खाली, नंगे पैर कैसे लोग भागे, और रास्ते में उनका कत्लेआम हुआ। वो उसका वर्णन भी इतिहास में आजकल नहीं है, पर ये बहुत कुछ हुआ। तो एक सिविल वॉर का रूप था, खून की नदियां बही। तो बाबा से उस समय पूछा शिव परमात्मा से, तो क्या ये विनाश है? बाबा ने कहा नहीं, ये तो ट्रेलर है। तो एटॉमिक वॉर का भी एक अंश रूप देखा, फिर सिविल वॉर का भी एक अंश रूप देखा, और उस समय बहुत प्राकृतिक आपदाएं आई थी, सुनामी जैसी भी आपदा आई थी और भूकंप आया था। क्वेटा शहर है जो बलूचिस्तान में है, वहां इतना जबरदस्त भूकंप आया था, पूरा का पूरा शहर वो तबाह हो गया था, धरती में चला गया था पूरा शहर भूकंप में। तो मानो ये तीनों ही जो विनाश के दृश्य ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार में देखे थे, और परमात्मा ने उनको कहा कि अब ये सृष्टि बदलने वाली है और आपके द्वारा नई सृष्टि की स्थापना होनी है, सतयुगी दुनिया आनी है, और उसके लिए माताओं बहनों को तैयार करो। तो ब्रह्मा बाबा ने एक बीज डाला जो आज हम देख रहे हैं वट वृक्ष के रूप में, 140 देशों में हमारी ब्रांचेस हैं, और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है और आप जैसे लाखों परिवार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नियमित विद्यार्थी बन करके सेवा केंद्रों पर आते हैं, ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, राजयोग का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ये थी शुरुआत इस विश्वविद्यालय की और मेरा छोटा सा अनुभव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। हम सभी तालियों से आदरणीय शिलू दीदी का धन्यवाद करते हैं। आप स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो हमारी संस्था के संस्थापक हैं। इन्हीं हमारे महान ब्रह्मा बाबा द्वारा परमात्मा ने इनमें अवतरित होकर नई दुनिया के कार्य का शुरुआत की। ये भागीरथ बने, भाग्यशाली रथ, जिन्होंने भगवान ने जिनको आधार बनाया नई दुनिया स्थापना करने हेतु। तो यही है हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। अब हम अपारे राजयोगी मोहन सिंघल भाई जी, जो इस विंग के साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के चेयरपर्सन हैं, उनकी भी साकार बाबा के अनुभव सुनते हैं उनके मुखारविंद से। आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी।
ओम शांति। मेरा भी ये परम सौभाग्य रहा कि मुझे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का के सानिध्य में कुछ वर्ष बिताने का मौका मिला। मैंने जस्ट इंटरमीडिएट पास किया था और उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहा था लखनऊ विश्वविद्यालय में। तब इस संस्था के संपर्क में आया और मैंने एक बात पाई कि यहाँ पर जो मेडिटेशन सिखाया जाता है उसको यदि हम अपने स्टडीज में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ऐसा अनुभव होता है कि ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ने का अनुभव होता है और रिटेंटिविटी पावर ब्रेन में ज़्यादा अनुभव होती है। तो इस कारण से मैं इसके संबंध में आया। लौकिक में माताजी पिताजी वह भी संपर्क में तभी आए थे और तभी कुछ दिनों के बाद बाबा का कानपुर में आगमन हुआ। जैसा शीलू बहन बता रहे थे, बाबा उस समय अलग अलग स्थानों पर जाते थे तो लखनऊ वालों ने भी निश्चित किया कि बाबा से मिलने के लिए कानपुर जाएंगे। तो सब लोग एक दिन निश्चित करके कानपुर गए। मैं भी आई वॉज जस्ट 16-17 ईयर्स ओल्ड। तो बाबा से पहले तो सब बुजुर्ग लोग मिले और फिर अंत में मेरा भी नंबर आया। बाबा की पर्सनैलिटी इतनी ग्रेट थी, इतनी ग्रांड पर्सनैलिटी थी, बहुत लंबा कद, गोरा रंग, आंखों में इतनी डिविनिटी, आध्यात्मिकता, ऐसी कशिश होती थी जैसे ये इस प्लेनेट का आदमी नहीं है, कोई दूसरे प्लेनेट से कोई फरिश्ता जैसे उतर के आया है। इतनी बाबा की डिवाइन पर्सनैलिटी थी। तो बाबा के पास गए, बाबा ने देखते कहा, आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो मैं तो ये अनुमान लगाया बहुत समय से माने एक्चुअली लखनऊ से कानपुर आए थे, सर्दी का मौसम था, थोड़ा धुंध भी था, रोड भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो शेड्यूल हमारा वहाँ पहुँचने का 7:30 का प्लान था, लेकिन पहुँचे 9 बजे, तो शायद हम बहुत लेट हो गए आने में 1.5-2 घंटा, इसलिए बाबा कह रहा है बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो मैंने बाबा को कहा हाँ बाबा ऐसे बस लेट हो गई। अच्छा बस लेट हो गई, बड़ी गुह्य रीति से बाबा ने कहा, आओ बच्चे, बाबा बहुत समय से इंतजार, आओ बच्चे आओ। बाबा बस कोई भी आता था ऐसे हाथ फैला देते थे, आओ बच्चे आओ, और बाबा में इतना मैग्नेटिक आकर्षण था, पुल था, कि हम बस खींचते हुए एकदम बाबा की बाह में आ जाए। और बाबा में जब बाबा से मुलाकात, ब्यूटी ये होती थी कि जैसे ही बाबा की बाह में आए देह भान भूल जाता था, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, सब भूल के बस मैं आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही हूँ। इतनी डिविनिटी बाबा में थी। तो बाबा से मिले, और मिलने के बाद बाबा ने बहुत बस स्पिरिचुअल, जैसे मैंने बताया अट्रैक्शन था। फिर बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे, तो एक्चुअली माय नेम इज श्री, फर्स्ट नेम श्री, तो मैंने बताया बाबा ऐसे श्री नाम है, श्री क्या बच्चे, फिर बाबा ने रिपीट किया, मैंने बताया श्री, तो बाबा वाज ऑफ वेरी जॉली मूड ऑल्सो, बहुत स्वभाव भी। सबसे बड़ी ब्यूटी बाबा की ये थी कि बच्चे के साथ बच्चे जैसा, युवान के साथ युवानों जैसा, वृद्धों के साथ अधेड़ों के साथ अधेड़ जैसा, ऐसा व्यवहार हर एक को लगता था बाबा मेरा है, जितना बाबा मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। तो ऐसा अनुभव हुआ, और बाबा ने जस्ट बहुत मूड में कहा आओ दादी आओ आओ, आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो श्री श्री। बाबा ने बोला कि देखो अभी तो ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकता, श्री माने जिसकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, दोनों पवित्र हों, वो देवताओं के होते हैं, क्योंकि शरीर का जन्म, शरीर तो विकारों की उत्पत्ति है, और आत्मा सतयुग से लेकर सतो प्रधान अवस्था से लेकर कलयुग अंत तक तमो प्रधान अवस्था में पहुंच गई है। तो अभी ना आत्मा पवित्र ना शरीर पवित्र, तो किसी को भी वास्तविक रीति से श्री लगाने का अधिकार नहीं है। बाबा भी नहीं लगा सकता तो कोई बच्चा भी नहीं लगा सकता। तो आज से बाबा तुम्हारा नाम मोहन करता है और श्री जैसा तुम्हें बनना है। तो बाबा ने एक जीवन का उद्देश्य भी बता दिया कि श्री यानी श्रेष्ठ बनना है, आत्मा को भी पवित्र बनाना है, शरीर यानी 5 तत्वों का बना पुतला है ये, 5 तत्वों को भी पवित्र बनाना है, और अभी से तुम्हारा नाम मोहन, तब से जैसे कि हमारा लौकिक नाम शारीरिक नाम मोहन हो गया, और श्री जैसा बनने का लक्ष्य बाबा ने दिया। तो ये बाबा से मिलने का पहला लक्ष्य था। बाबा हर एक को ये अनुभव कराना चाहता था कि बस अब तुम्हारा ये नया जन्म हुआ है, जैसे जन्म नया होता है तो बच्चे का नया नामकरण होता है ना, तो इसीलिए अगर किसी का नाम मानो माया देवी होता था, बाबा कहता था अब माया का क्या काम, यहाँ माया यानी 5 विकार जो कमजोरियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आदि निगेटिविटी जितनी है, इन सब को कंबाइंड रूप से माया कहा जाता है। तो अब तुम्हारा नाम माया नहीं, मानो कोई भी बाबा नाम अच्छा गीता देवी या लक्ष्मी देवी कोई भी अच्छा नाम दे देता था। किसी का नाम मानो होता था कि भाई तुम्हारा नाम गरीब दास है, तो बाबा कहता था अरे अब तो भगवान मिल गया, सब इतना सौभाग्य हो गया, अब तो तुम अमीरों के भी अमीर हो गए। उनका नाम बदल के बाबा अमीर चंद कर देता था और इस तरह पुराना नाम भूल करके हर एक व्यक्ति को जिनको भी बाबा नाम देता था उनको ऐसी अनुभूति होती थी जैसे मेरा नया जन्म हुआ है। लक्ष्य ये होता था कि पुरानी जो ऐसी बातें हैं निगेटिव, उन बातों को भूल जाए और शरीर भले वही है, वही संबंध है, वही पेशा है, धंधा है, नौकरी है, सब कुछ, लेकिन अंदर से अपने को ये समझना है कि अब मेरा नया दिव्य जन्म हुआ है। तो इसीलिए हम सबका ये अनुभव रहा है, आप लोग भी यही अनुभव करें। हाँ, यहाँ आए हैं ना, तो ये दिन को याद रखिएगा, ये आपका जैसे नया दिव्य जन्म हुआ है, यहाँ पर आप आए हैं परमात्मा के घर में और यहाँ से आप एक नया जीवन प्राप्त करके जा रहे हैं, तो इस नए जन्म की स्मृति सदा अपनी बुद्धि में रखेंगे तो क्या होगा कि जो पुरानी बातें हैं, विकारी बातें हैं, काम क्रोध लोभ मोह से संबंधित, उन सब की धीरे धीरे विस्मृति होती जाएगी और नया जो आपको आज आत्मा का शिविर भी कराया आज और कल में, और वो सब कि आत्मा प्रेम स्वरूप है, ज्ञान आनंद सुख शांति पवित्रता शक्ति, तो बस वो स्मृति रहेगी तो वैसी ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का आप अनुभव करते रहेंगे। तो एक तो ये अनुभव हुआ, दूसरा बाबा में इतनी डिविनिटी थी, जैसा मैंने बताया कि बाबा किसी को भी बुलाते थे और बस, क्यों यहां से आप कुछ सजेशन रहेगा, कुछ साहित्य लेके जाइएगा या कैसेट्स वगैरह, तो एक साहित्य है ब्रह्मा बाबा की अद्भुत जीवन कहानी, एक अद्भुत जीवन कहानी। तो बाबा ने इतना अभ्यास पहले खुद पक्का किया था कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और व्यक्ति की जहां जहां बुद्धि जाती है, व्यक्ति की पत्नी की तरफ, बच्चों की तरफ, धंधे की तरफ, पैसे की तरफ, अपना जो जॉब होता है जो उस तरफ, जहां जहां व्यक्ति की बुद्धि जाती है, तो बाबा ने लिख लिख करके ही पक्का किया था कि मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, जसोदा बाबा की युगल का नाम था, निर्मला आत्मा है बेटी का नाम था, इस तरह नारायण आत्मा है बेटे का नाम था, आदि आदि। तो धीरे धीरे बाबा को इतना अभ्यास पक्का हो गया था कि बाबा जिसको भी देखता था वो ही अपने को एकदम आत्मा समझने लगता था, मैं शरीर नहीं हूं। इसीलिए बाबा जब हाथ फैलाता था, हम लोग जाते थे, तो बस हम लोगों को भी थोड़े समय के लिए वही अनुभूति होती थी और फिर बाबा आओ बच्चे आओ, जैसे हमें बुद्धि से नीचे उतारता था, क्योंकि बुद्धि से तो हम एकदम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, फिर बाबा ऐसा अनुभव कराता था, प्रसाद मुख में खिलाता था जिसे यहाँ टोली कहते हैं वो, और कुछ बात वगैरह करके एक जाता था दूसरा आता था। तो ये अभ्यास आप सबको भी, इसीलिए पहला दिन ये जो बताया गया है आत्मा का लेसन, ये सुनने तक ही सीमित न रहे, बल्कि आप रेगुलर अपने लोकल ब्रांच के कांटेक्ट में रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस देह से न्यारी हूँ, और ये शरीर तो मेरा कॉस्ट्यूम है, रथ है, जैसा आज शिवानी बहन ने भी बताया आपको, और इस रथ के द्वारा मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ और इस संसार में जैसे नाटक होता है, किसी को पति का पार्ट, पत्नी का पार्ट, बच्चे का पार्ट, माता का, पिता का, ऐसे ही मुझे भी ये पार्ट मिला है। मैं पुरुष के तन में आत्मा हूँ, मेरी पत्नी स्त्री के तन में आत्मा है, वास्तव में हम सब आत्मिक रूप में भाई भाई हैं, शरीर रूप में भाई बहन हैं। वो अनुभूति अगर रहेगी तो हमारी दृष्टि वृत्ति सब कुछ एकदम निर्मल पवित्र शक्तिशाली होती चली जाएगी। तो एक ये अनुभव करने की चीज है जो पहले बाबा ने खुद अनुभव करा और लिख लिख के पक्का, और फिर बाबा जिसको भी दृष्टि देते थे बस उसको भी वही अनुभूति होती थी। एक ये बात सब अनुभव करते थे, बड़ा ग्रेट बात है, साधारण नहीं है। पूरे जन्म भर जीवन भर जब से हम लोग जन्म लेते हैं अपने को भाई ये रोल समझते हैं। अभी अब किसी कोई पूछेगा आप कौन है, तो हम अपना रोल बता, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, आदि आदि, बट दैट इज अवर रोल। लेकिन बाबा ने बताया दैट इज योर रोल बट एक्चुअली यू आर ए सोल, आप आत्मा हैं और इस शरीर के द्वारा ये पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो एक ये अनुभूति की बात होती थी। दूसरी बात यह होती थी कि बाबा से जब मिले, तो मिलने के बाद हमारा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जो ISM जो वर्तमान समय IIT है। तो बाबा से पूछा हमने, हम लोग तब तो बाबा थे कि बाबा जाएं क्या वहाँ, क्योंकि ये होता था 4 साल पढ़ना है उसके बाद जॉब वगैरह। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे पढ़ो, और बाबा को तो तुम्हें इंजीनियर बनना है, और बाबा को तुम्हारे द्वारा बहुत सेवा देश और विदेश में करानी है। कभी भी ये पहले सोचा नहीं था, लेकिन बाबा तो कैसे त्रिकालदर्शी जानी जाननहार था। तो पढ़ाई भी की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमारा स्पिरिचुअल स्टूडेंट का, बाबा यूज टू टेल कि भाई डोंट बी ए सिंगल स्टूडेंट, बी डबल डॉक्टर, बी डबल इंजीनियर। डबल का मतलब एक तो लौकिक पेशे से भी जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं वो, और साथ में स्पिरिचुअल स्टूडेंट भी बनो, स्पिरिचुअल डॉक्टर, जैसा भी बहन जी ने बताया कि आपको स्पिरिचुअल डॉक्टर बनना है। तो ऐसे ही बाबा की प्रेरणा ये रहती थी, भले जो पेशा है धंधा है वो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी का भी, आध्यात्मिकता का भी समावेश करना है। तो वो हमने पास किया अकॉर्डिंगली 1967 में, 4 ईयर कोर्स था। हमारा पोस्टिंग आसाम में हुआ। तो हम ये देखते थे बाबा हर बच्चे के भविष्य को जानकर अकॉर्डिंगली बच्चों को गाइडलाइन प्रोवाइड करता था, बताता था। तो यद्यपि पास करने के बाद हमारा और 3 जगह सिलेक्शन हुआ था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में, दिल्ली हैदराबाद, और ONGC आसाम में। तो हमारी दिल नहीं थी ONGC में जाने की, इतनी दूर आसाम में कोई भी ब्रांच नहीं थी, 67 की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा तो जानी जानन आ रहे ना। तो हमें यही अनुभव होता था, बाबा जो गाइडलाइन देगा उसमें हमारा कल्याण है। भले मोमेंट्री हमें लगे अरे बाबा जो बता रहा है हमें लगेगा कि उसमें नहीं बल्कि इस दूसरी चीज में कल्याण है, तो हम चाहते थे IIM मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, लेकिन क्योंकि वहाँ सेंटर थे, ब्रांचेस थे, वहाँ पर ज़्यादा कन्वीनियंट था हम लोगों का लाइफस्टाइल के मुताबिक। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बच्चे तुम्हें आसाम जाना है, वहाँ मेरे बहुत भोले वाले बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, बाबा वहाँ तो एक ब्रांच भी नहीं है, एक सेंटर भी नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं है जो ज्ञान में हो। तो बाबा ने कहा, बाबा इसीलिए तो भेज रहा है बच्चे, बस तुम्हें जाना है निमित्त, बाबा का संदेश देना है और उसके बाद बाबा अपने पास बुला लेगा। ये बाबा ने देखिए खास बात बोली, बाबा बुला लेगा। ठीक है, बड़े फिर जाने का, क्योंकि बुद्धि में ये था जरूर इसमें कुछ ना कुछ कल्याण है, भगवान के महावाक्य हैं। और देखा कि वहां गए और थोड़े समय में ही बाबा ने जैसे बहुत ही वहां पर, बल्कि उस समय आतंकवादी काफी थे वहां, लेकिन ऐसी सेवा कराई, क्योंकि वहां का बिजनेस पूरा आसाम है भले, लेकिन मारवाड़ीज ने कैप्चर किया हुआ था, पूरे मारवाड़ी सब बिजनेस में वो ही वो थे, और वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनका खान पान भी रिलेटिवली शुद्ध होता है, तो वो सब इस ईश्वरीय ज्ञान में आए। और जैसा बहन जी बता रहे थे कि शुरू में साक्षात्कार होते थे, तो ऐसा ही वहां पर भी ना, जो आने वाले थे, अब हमें तो इतना सेवा का अनुभव था नहीं, और ये, और बाबा कई बार कहता है, जब मैं देखता हूँ कि सेवा करने वाला बच्चे में उतना अनुभव नहीं है, तो कई बार मैं प्रवेश करके भी सेवा करा लेता हूँ। तो ज्ञान सुनाते थे और बस सुनते सुनते ही काफी माताएं, काफी बहनें, कन्याएं, कुछ भाई भी एकदम ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार होता था अपने अपने इष्ट देवों का, ईश्वर का, ज्यादातर तो कृष्ण का, नारायण का साक्षात्कार होता था। तो छोटा शहर था, शिवसागर में पोस्टिंग हुई थी, तो शिवसागर में उस समय ही वहां सब जगह हो गया, अरे यहाँ तो भगवान के दर्शन होते हैं, और थोड़े समय में ही बहुत लोग वहां पर आने लगे। ईश्वर का काम ईश्वर खुद कराता है, हमारा तो ये अनुभव है, हम लोगों में सामर्थ्य हो या ना हो। और इस तरीके से वहाँ ये चलता रहा, और बहुत वहाँ पर, और अभी जैसा बहन जी ने बताया, वहाँ 68 में वहाँ पर पहला सेंटर खोला शिव सागर में, और अभी 2018 में वहाँ पर गोल्डन जुबली मनाई थी उस सेंटर की, और वहाँ बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर भी बना, जो कभी सोचा भी नहीं था, जो सेंटर भी नहीं था, एक गीता पाठशाला भी नहीं थी, सिर्फ क्लास के रूप में शुरू हुआ था उसने, और दादी जानकी जी हमारी वर्तमान में जो हैं, उनसे पहले जो मुख्य प्रशासिका थी, वो दादी जी वहाँ गई और उनके वरद हस्तों से गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का वहाँ पर उद्घाटन हुआ। तो ये भी बाबा का काम वहाँ पर देखने को मिला। तो भाव क्या है कहने का, कि अगर हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं, भले चाहे बाबा साकार रूप में नहीं है, लेकिन अभी भी बाबा बच्चों को ऐसी प्रेरणाएं, ऐसी शिक्षाएं बहनों के द्वारा, दादियों के द्वारा, दीदियों के द्वारा वो देते हैं, गाइडलाइंस, जिसमें हमारा जीवन का कल्याण ही कल्याण है। हमने तो ये अनुभव किया, और बाबा ने जैसे कहा था 68 वगैरह में वहाँ गए और कुछ साल वहाँ रहे, 2-3 साल, और फिर वहाँ से, चूंकि हम देहरादून से गए थे, तो वहाँ पर बहनों का निमंत्रण था कि यहाँ म्यूजियम बनाने का प्लान है, आप आओ। तो बाबा को पत्र लिखा, 69 की बात है, अर्ली 69 की, कि बाबा ऐसे देहरादून जाने का प्लान है, तो बाबा ने कहा भले जाओ बच्चे, लेकिन पहले मधुबन आओ और तुरंत आओ, प्लेन से आओ। तो देखो बाबा ने इंडिकेशन दिया, और बाबा ने कहा था उस समय तो साधारण रीति से भी हमने भी सुन लिया, जाओ बच्चे सेवा करो, बाबा समय पर बुला लेगा। कौन से समय पर बुला लेगा ये सोचा नहीं था, लेकिन इतने क्रिटिकल समय पर बुला लिया, जनवरी मास था, बाबा ने लिखा आओ बच्चे तुरंत आओ, छुट्टी लेके आए और 17 जनवरी की सुबह माउंट आबू में पहुंच गए। और 17 और 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा की ऐसी कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। कर्मातीत अवस्था उसे कहते हैं अल्टीमेट, बहुत उच्च स्थिति, अशरीरी विदेही स्थिति, और जो कि संपूर्ण स्थिति जिसे कहा जा सकता है, वो बाबा का देखा। और जिस अभी तक जो हम पढ़ते आते थे विवेकानंद के बारे में, रामकृष्ण परमहंस और महान आत्माओं के, वो सारी चीज बाबा के अंदर हमें देखने को प्रत्यक्ष मिली। जब भी बाबा को देखते थे बस एक ऐसा अद्भुत शक्ति का एहसास होता था, जैसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं बाबा का। कई बार हम लोग ध्यान से गौर से देखते थे तो बाबा का ऑरा भी नजर आता था, जो जैसे महापुरुषों के ऑरा होते हैं ना, लाइट का ताज, आभामंडल, वो देखने में आता था। और वो देखते के ऐसा लगता था कितना बाबा का पुरुषार्थ है। तो ये आभा मंडल, और अंतिम दो दिनों में तो हमें ऐसा आभास हुआ, हमेशा जब जाते थे बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या पुरुषार्थ चल रहा है, क्या कर रहे हो, और वो सब हम लोग बताते थे, बाबा डायरेक्शन देते थे। लेकिन 17 जनवरी और 18 जनवरी को जब बाबा से मिले, तो बाबा की वो कर्मातीत अवस्था का देखने को मिला। बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ने दृष्टि दी, और बाबा जो भारतीय संस्कृति में कहा गया है अल्टीमेट पुरुषार्थ है, मन जीते जगत जीत, भारतीय संस्कृति में मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वो स्थिति बाबा की देखी, बाबा बस देख के कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मतलब हमें प्रश्न भी बताने की, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा मन का हाल तुरंत जान लेते। इतनी बाबा के अपने मन में प्योरिटी आ गई थी कि दूसरे के मन का हाल तुरंत जान लेते थे। तो ये बाबा की अल्टीमेट स्टेज 17 और 18 जनवरी को हमने 5-6 दिन महसूस की, और जब भी जाते थे बाबा के पास ये अनुभव होता था। और उसके बाद बाबा से ये भी वरदान मिला, बहुत कई प्रकार के समय प्रति समय वरदान मिलते रहे, शक्तियां मिलती रहीं, और बाबा से ये अनुभव होता था। अंतिम दिन विशेष करके ये अनुभव हुआ कि 18 जनवरी को, एक तो जैसे बहन जी ने बताया बाबा पत्र लिखते थे, तो बाबा तो सिंधी में पत्र लिखते थे, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करके भेजा जाता था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से बाबा पहले से ही बच्चों को गाइडलाइन ऐसी दे देते थे, बच्चों को ये महसूस होता था कि हमारे जीवन का कल्याण इस चीज में ही है जो बाबा ने, कई बार विजिबली लगता था अरे ये क्या बताया, ये तो नॉट पॉसिबल, लेकिन बाबा जो बताते थे एकदम सहज हो जाता था। तो बाबा ने अंतिम दो दिनों में कई प्रकार के अनुभव कराए, कई प्रकार की बातें वो करी। मैं उन सब का तो वर्णन यहाँ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूंगा, आज बाबा भले साकार रूप में नहीं है, लेकिन साकार रूप में न होकर भी बाबा अव्यक्त रीति से थ्रू हमारी बड़ी बहनों के द्वारा, बड़े भाइयों के द्वारा कितनी डायरेक्शन देते हैं कि हमारे जीवन में ना सदा ऐसा महसूस होता है जैसे सफलता ही सफलता है और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता और खुलता जाता है। आप जितना जितना इस संस्था के लोकल ब्रांचेस के कांटेक्ट में आएंगे और उनके साथ साथ यहाँ पर भी समय प्रति समय ये प्रोग्राम होते रहते हैं आएंगे, तो ऐसा महसूस होगा जो हमें उस दिन अनुभव हुआ। हमें ये अनुभव हुआ, एक तरफ तो मन जीते जगत जीत बाबा का ये अनुभव हुआ, और दूसरा ये अनुभव हुआ बाबा ने जब शरीर छोड़ा, अंतिम दिन जो मुरली चलाई तो पूरा ये शरीर के कर्म भोग होते हैं। बाबा की भी आयु 93 इयर्स थी, ठंडी का मौसम था जनवरी का, बहुत तब तो जंगल वगैरह बहुत थे तो ठंडी भी बहुत ज्यादा पड़ती थी। तो उस दिन बाबा ने मुरली भी चलाई और एक बार भी बाबा को ना शारीरिक कोई व्याधि हुई, ना खांसी हुई, ना कफ साफ करने की जरूरत पड़ी, और वो उस अवस्था को ही हम जैसे कर्मातीत अवस्था संपूर्ण स्थिति कहते हैं कि शरीर में के सब कर्म भोग के ऊपर उसने जो योग बल ने विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसा संपूर्ण स्थिति क्लास करा के बाबा बाहर गए और बस दरवाजे से कह के अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। बाबा को पहले ही आभास हो गया था, इसीलिए बाबा ने जो भी तीन चार पेंडिंग वर्क थे वो उन दो दिनों में पूरे करे, 17 और 18 जनवरी को कुछ लेटर्स लिखने बाकी थे वो पूरे करे, बाबा ने बिल्डिंग को एक लेनी थी वो पूरी की, आदि आदि। और फिर बाबा क्लास के बाद गए छुट्टी लेके और बस दादी जी के हाथ में हाथ, प्रकाशमणि दादी जी के, और बस नैन मुलाकात करते हुए, जैसा कहते नैनों के द्वारा शक्ति का पूरा दान करते हुए बाबा ने शरीर का त्याग किया। लेकिन ब्यूटी ये थी कि शरीर का त्याग बाबा ने 18 जनवरी की रात किया। मैं चूंकि यहाँ पर ही था, मुझे देखने का वो मौका मिला। उसके बाद 19 का दिन 18 की रात, 19 का दिन रखा रहा शरीर, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा का अग्नि संस्कार किया गया। कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, उस समय इतना एडवांसमेंट तो था ही नहीं, 69 की बात है, लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता रहा और ऐसा लगता था कि जैसे बाबा बस सो रहे हैं। कोई शरीर से भी वेरी स्ट्रेंज, डॉक्टर भी है, कोई दुर्गंध नहीं, कोई काला नहीं पड़ा शरीर, और ये इस बात का प्रतीक है कि एक तरफ तो बाबा ने मन को पवित्र बनाया था, मन जीते जगत जीत, और दूसरा ये बाबा ने 5 तत्वों के बने हुए शरीर को भी पवित्र बनाया। ये एक पवित्रता की बात है। तो बस हम सबको भी यही लक्ष्य रखना है कि हम सब भी ये जो ईश्वरीय ज्ञान और योग की बातें हैं, इनको जीवन में जितना जितना धारण करेंगे, हमारी आत्मा, हमारा ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, ये सब भी पवित्र होता जाएगा और अल्टीमेटली हम सब जीवन में सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। और अभी तक के मुझे भी इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में लगभग 60 वर्ष हो गए हैं, और मैंने देखा जीवन में अनेक प्रकार के समस्याएं भी आई होंगी, प्रॉब्लम भी, कोई बीमारी, कष्ट वगैरह, लेकिन वो सब सूली से कांटा जैसा अनुभव हो जाती है। आएगी व्याधि, लेकिन ईश्वरीय स्मृति से, याद से, योग से वो जैसे सूली से कांटा जैसा हो जाता है। तो मेरा आप सबसे भी ये नम्र निवेदन रहेगा कि आप जब यहाँ से जाएं, अपने लोकल सेंटर से कांटेक्ट रख के इसके बारे में और कुछ एडवांसमेंट ये प्राप्त करें और अपने जीवन में सदाकाल के लिए सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति करते चले और सफलता को प्राप्त होते रहे। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। हमारे आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से तालियों से भाई जी का धन्यवाद करें। हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता माने संपूर्ण प्रजा के पिता, हमारे भी पिता, हमारे पिताओं के भी पिता और सर्वधर्म पिताओं के भी पिता, वो है प्रजापिता। अभी सभी धर्म वाले उनको नहीं जानते हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं जब सभी उनको अपने पिता के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये है हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो एक पुरुष हैं। उनमें एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या थी कि बाबा में पुरुष के गुण के साथ साथ स्त्रियों के गुण भी थे, तो बाबा संपूर्ण थे। इसीलिए संपूर्ण सृष्टि के प्रजापिता भगवान ने उनको टाइटल दिया, गुण के आधार पर ही टाइटल मिलता है। तो बाबा में वो गुण थे इसलिए बाबा को वो टाइटल दिया और भगवान ने उन्हें अपना आधार बनाया। इसलिए उनको कहा भागीरथ, भाग्यशाली रथ, जिन्होंने भगवान ने जिनको सेलेक्ट किया। ठीक है, तो सभी अपने सभी को धन्यवाद। कुछ सूचनाएं हैं। एक तो जो विंग में सभी भाई बहन आए हैं, उनके जो गाइड भाई बहन हैं, वो कल सुबह ट्रेवल ऑफिस में जाकर, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाकर 9 से 11 बजे अपने व्हीकल्स के अरेंजमेंट के लिए सूचना लिखवा दें, ताकि समय पर व्हीकल्स का अरेंजमेंट हो सके। ये वहां से सूचना है। और एक और सूचना है, आपके पीछे बाहर डिजास्टर मैनेजमेंट एग्जीबिशन आप सभी के लिए लगाई गई है, पर अभी तक देखा गया है कि आप सभी क्लासेस में इतने बिजी थे कि आपको पूरा समय नहीं मिल पाया है। तो आपसे अनुरोध है, जैसे ही प्रोग्राम समाप्त होता है या शुरू होता है, उससे थोड़ा समय आके आप इस प्रदर्शनी का लाभ जाने से पहले अवश्य लें, क्योंकि आप सबके लिए ही है। और आने वाले समय में उन सब बातों की जो वहां बताई जा रही है, हम सभी को जरूरत पड़ने वाली है। तो उस एग्जीबिशन में सभी अवश्य जाएं और उसका लाभ अवश्य लें। ओम शांति।